तो गुरु में और भगवान में और प्रसाद में साधारण बुद्धि नहीं की जाती है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान में मूर्ति में पत्थर बुद्धि और प्रसाद में भोग बुद्धि करें, अन्न बुद्धि करें तो ये उन्नति से वंचित रह जाएंगे। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर, उनका जन्मदिन था, कुछ उत्सव था, बड़े शोभायमान होकर कहीं जा रहे थे। गुरुजी ने देखा शिष्य यशस्वी हो रहा है, गुरुजी प्रसन्न हुए। जैसे बेटी की ऊंचाई देखकर बाप खुश होता है, ऐसे शिष्य का मंगल देखकर गुरु भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता से गुरु ने माला दे दी। माला दे दी तो माला का तो गुरु की दी हुई माला है तो उसका तो बहुत आदर होना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर मिट्टी भी उठा के दे देते हैं, लीद भी दे देते हैं, तभी भी शिवाजी महाराज उसका आदर करते हैं। तो गुरु की दी हुई वस्तु है, देने वाला कौन है कि सद्गुरु है, जिसके हृदय में सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा चमकता है, जिसकी आंखों से परमात्मा की कृपा और आनंद के तरंग बरसते रहते हैं, जिसका शरीर 2400 घंटा सत्यचित आनंद स्वरूप के वैउस बरसाता रहता है, वो प्रकृति पर और वातावरण पर उनकी बड़ी रहमत है। ऐसा रहमी कृपालु दयालु आनंददाता सद्गुरु के हाथ से लीद मिली तभी भी शिवाजी के लिए प्रसाद है, मिट्टी मिली तभी भी शिवाजी संभाल के रखते प्रसाद है। लेकिन उस मूर्ख इंद्र ने, देखो देवों का राजा है और मैं उसको मूर्ख कह लेता हूं, मूर्ख इंद्र ने उस समय नहीं समझा। गुरु ने दिया हुआ हार, जैसे कोई साधकों को इधर रहते हैं तो हार मिलता है तो आदर से रखते हैं, और कोई नेता आते हैं तो लेके जाते पहन के लोगों को दिखा के फिर कहीं का कहीं कर देते, तो फिर उनकी सीट भी कहीं की कहीं हो जाती। जय राम जी की। और जो आदर करते हैं तो उनका भी आदर होता है और उनकी सीट भी पक्की हो जाती है, ऐसा भी कई अनुभव हो गए लोगों को। जय राम जी की। तो ऐसे इंद्र की सीट भी चली गई, गुरु की माला का अनादर किया तो इंद्र की सीट भी चली गई। श्रीमद् भागवत में आता है, सीट शब्द नहीं आता, सीट मेरा मिलाया हुआ है। गुरु ने माला दी और इंद्र ने, गुरु की माला का आदर करना चाहिए था, आंखों पे धरनी चाहिए थी, प्राणों की नहीं, उसका प्रेम से है स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन वाहवाही के मद में इंद्र ने वो माला लेकर हाथी के सिर पर रख दी। हाथी तो हाथी है, चलते चलते हाथी ने वो माला सूंड में उठाकर पैरों तले को चल दी। बृहस्पति को बताने वालों ने बता दिया जाके, बृहस्पति को लगा कि मेरी दी हुई प्रसादी और हाथी के पैरों तले कुचलवा दी है, ऐसा किया उसने। इंद्र मूर्ख है। व्यक्ति ने बता दिया इंद्र के दुश्मनों को कि इंद्र के गुरु इंद्र से नाराज हैं। जयराम जी की। इंद्र के गुरु इंद्र पर राजी नहीं है। शत्रुओं को तो मौका मिल गया कि जिसका गुरु रूठा है वो चाहे इंद्र हो, इंद्र का और कोई हो, जिसका गुरु जिस पर राजी नहीं है उस आदमी का तो हौसला धीरे धीरे नहीं एकदम नष्ट हो जाता है। गुरु नाराज है तो उस आदमी के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, गुरु नाराज है तो उसका यश भी नष्ट करने में आसानी होगी, और गुरु नाराज है तो उसका राज्य भी छीनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दैत्यों ने धावा बोल दिया, जो दबे हुए छुपे छुपे फिरते थे उन दैत्यों ने भी हिम्मत करके इंद्र पर धावा बोल दिया और इंद्र बुरी तरह परास्त हुए। देवता भागे हैं अमरापुरी छोड़कर और इंद्र भी रंक जैसा भागता फिरा, बड़े बुरे हाल हुए। बुरे हाल होने के पहले इंद्र ने अपनी गलती संवारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ऊपर से पता चला कि शत्रुओं को पता चल गया है कि गुरु नाराज है, जाऊं मैं गुरु को राजी करके आऊं, तो शत्रुओं को पता चला है मेरे पर मुसीबत ना आ जाए इसलिए गुरु को राजी कर लूं। गुरु भक्ति से गुरु को राजी नहीं करने गया, जैसे हनुमान जी प्रभु भक्ति से प्रभु को राजी करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो इंद्र गुरु को राजी करने के लिए गया। तो इंद्र आ रहा है ऐसा गुरु के अंतःकरण में ख्याल आया, तो गुरु जी अपने पिछले कमरे के दरवाजे से कहीं निकल, पत्नी को कह दिया कि इंद्र आए तो बोल देना गुरुजी नहीं, मुलाकात नहीं कराना। इंद्र आया गुरुजी से मिलना है, बोले गुरुजी अभी नहीं है, हम नहीं मिलेंगे। तो इंद्र वापस आए हैं, अब मुसीबत में है और गुरुजी नाराज है और नहीं मिलते हैं, तो मुसीबत पक्की हो गई एकदम। शत्रु को और हिम्मत मिल गई और शत्रु ने धावा बोल दिया, धावा बोल दिया तो बुरी तरह इंद्र भटकता रहा। कहां गया वो ऐरावत और कहां गया राजाधिराज महाराज। जब पुण्य होते हैं और गुरु की कृपा होती तो आदमी यशस्वी होता है, पूजा जो होता है, और वही अब पुण्य के प्रभाव से, गुरु कृपा के प्रभाव से इतना यशस्वी तेजस्वी हुआ और उसको भूल कर फिर अहंकार में आ गया तो कृपा वापस, तो फिर वही हाल थे, पुनः मुसको भव, जैसे थे वैसे भटकने लगे। भटकते भटकते भगवान नारायण के पास आए, अनुनय विनय किया। नारायण ने कहा तू तो गुरु का ठुकराया हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि को कहते और। गुरु रूठे हरि, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो जैसे गंगा में स्नान करते समय और तीर्थों का स्मरण नहीं करना चाहिए, गंगे मात की जय बोलना चाहिए, ऐसे गुरुद्वार पे और गुरु मंत्र लिया है तो हो नासिक में हो वडो संता है, फलाने अंदर हो वडो संता है, फलाणु वडो है, फलाणु महापुरुष है, तो ये शिष्य की भक्ति में व्यभिचार मालूम होता है, ये व्यभिचारी श्रद्धा है। और व्यभिचारी श्रद्धा वाले को गुरु जो देना चाहते वो पचता नहीं। तो जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए लूला लंगड़ा पति एक बार मिल गया तो उसका पति है, पार्वती को ऋषियों ने कहा, ध्यान संबुदन सब, पार्वतियों को सप्त ऋषियों ने कहा कि बभूत लगाते हैं, सांप गले में है, मुंडों की माला पहनते, तेरे को तो नजदीक जाने में भी बदबू आएगी, खोपड़ियां पहनते, उसको तू पति मानने के लिए तप कर रही है। नारायण देखो कितने आराम, कितने ओ, उनकी मणि चमकती, मुकुट ये वो, देखो सुदर्शन चक्र गदा पद्म, पद्म की सुवास कितनी सुंदर, तुम जरा तो सोचो। पार्वती कहती है कि नहीं, मैंने निर्णय कर लिया, एक बार मैंने अपने दिल झुका दिया उधर, एक बार मत्था टेक दिया मैंने पति भाव से, अब आप सप्तऋषि में आपका अनादर तो नहीं करती, लेकिन ये बात आपकी मैं कभी नहीं मान सकती। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभु न तो रहूं कुमारी, करोड़ों जन्म तक मैं मेहनत करूंगी लेकिन वरूंगी तो शिव जी को। ऐसे ही पतिव्रता स्त्री एक बार सिर झुका दे जिस पति को, उसी से उसका भला है, ऐसे शिष्य का उसी से भला है कि एक बार जिस गुरु का हो गया, सतगुरु का हो गया। कान फूके गुरु होते हैं, कुल परंपरा के गुरु होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मज्ञानी गुरु जब सतगुरु रूप में मिलता है तो फिर वो सतगुरु को सतशिष्य बन, सतशिष्य को सतशिष्य बनकर लगे रहना चाहिए। ऐसा शरीर कटाए होमी देवे तदपि मन का मैल न जाए, शरीर को टुकड़े टुकड़े करके हवन कर दे तभी भी ब्रह्म ज्ञान के सिवाय, आत्म साक्षात्कार के सिवाय मन का मैल नहीं जाता है, और सतगुरु की कृपा के बिना उल्टा होकर टंग जाए तभी भी अज्ञान नहीं मिटता है। पैसा कमाना एक बात है, प्रसिद्ध हो जाना दान बान करके ये दूसरी बात है, लेकिन सतगुरु को पहचानने के लिए बड़ी ऊंची खोपड़ी चाहिए और ऊंचा पुण्य चाहिए। नारायण 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 नारायण, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जैसे कुम्हार होता है ना, अंदर हाथ रखता और बाहर से ठोकता है तब घड़ा बनता है, ऐसे गुरु अंदर से कृपा का हाथ रखते और बाहर से ठोकते तभी बनता है आदमी का जीवन, ऐसे नहीं फूंक मार से मन से बन जाता है। वाह भाई वाह, वाह सेठ वाह, वाह सेठ वाह, ऐसा करने से सेठ का कल्याण नहीं होता। गुरु ऐसा हो कुछ शब्द की चोट करके, घुटाई पिटाई करके, और जैसे पत्थर में से शिल्पी घुटाई पिटाई करके भगवान बना देता है, मिट्टी में से कुम्हार घड़ा बना देता है, ऐसे सतगुरु जीव में से ब्रह्म बना देते हैं, ऐसे सतगुरु कभी कभी कहीं कहीं मिलते हैं। एक भरोसा एक हास, जो आदमी कभी किसी से लेगा, कभी किसी के लेगा, कभी किसी से लेगा, तो उस ग्राहक की भी दुकानदार के दिल में वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो अपना ग्राहक है, बंधा हुआ है, तो उसको जरा रियायत करने की भी इच्छा हो जाती, उधार देने की भी इच्छा हो जाती, और दिवाली आए तो उस ग्राहक को बोनस देने की भी इच्छा हो जाती है। ऐसे गुरु भी कभी बोनस दे देता है तो निहाल हो जाता है। आज जो इधर से उधर भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो गुरु बोलेगा भाई अभी थर्ड क्लास चला है, सेकंड क्लास होने दे, फर्स्ट क्लास होने दे, तब देखा जाएगा। तो अपना फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में नंबर होते हुए आदमी थर्ड क्लास में चले जाते। तो ये आध्यात्मिक जगत की मति बढ़नी चाहिए। व्यवहार में भले कोई अपने को चतुर समझे, लेकिन आध्यात्मिकता में ये चतुराई काम नहीं आती। ऐसी चतुराई को तुलसीदास ने गाली दी है, मीठी गाली दी, चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, आग लगी। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पर्यो आचार, आचार विचार अटकल है, होशियारी मैनेजमेंट सब अकुल है, वो पहन पूर में बह जाएगा, बह गया। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पर्यो आचार, तुलसीदास ने ऐसे लोगों को डांटा। तो इंद्र इतना चतुर था, और इंद्र यशस्वी होकर जा रहा है, गुरु खुश हुए, गुरु ने माला दे दी। इंद्र ने उस माला को आंखों पे लगाना चाहिए था, गुरु की दी हुई चीज है, गुरु की दी हुई लीद शिवाजी महाराज संभालता है, आंखों पे रखता है, गुरु जी की दी हुई मिट्टी का खोबा शिवाजी संभाल के रखता है आजीवन। और इस इंद्र ने गुरु की दी हुई माला रख दी हाथी के मत्थे पर, चलते चलते हाथी ने अपने सूंड से वो माला पैरों तले कुचल दी, गुरु की दी हुई प्रसादी पैरों तले कुचल दी। ऐसा जब गुरु को पता चला, गुरु नाराज हुए, तो शत्रुओं को खबर दे दी किसी ने कि इसके ऊपर इसका सदगुरु नाराज है। शत्रुओं ने देखा, भले इंद्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन सदगुरु की रहमत तो नहीं ने उस पर, वो तो अपने शुक्र धमाधम कर दिया, इंद्र को परास्त कर दिया। खेलते खेलते हंसते हंसते, जिसका कोई समर्थ रक्षक नहीं है, उस आदमी का कब पतन हो कोई पता नहीं। इंदिरा के पीछे इतना विरोध था, फिर भी उसकी रक्षक समर्थ आनंदमयी मां थी। और इंदिरा ने जब मीसा लगाया, आनंदमयी मां नाराज हुई, बोले तुम करो तुम भरो, और उसी मीसा ने इंदिरा को गिरा दिया। वो गिरी और इधर उधर जेल में जाने की नौबत आ गई इंदिरा को, और फिर माता जी के पास चक्कर काटे, अब क्षमा याचना की, और माता जी ने फिर कृपा कर दी, तो फिर इंदिरा चमकी। तो जिसका कोई समर्थ हयात सतगुरु रक्षक नहीं है, वो आदमी किस वक्त कौन से प्रॉब्लम से दुखी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कौन सा कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई पता नहीं। उनका पूरा सुख कब दुख में बदल जाए कहना ही मुश्किल है। लेकिन रहते निगुरे लोगों के बीच, उन बेचारे मंत्र लेने वाले साधकों का भी आधा कसूर है, रहते निगुरों के साथ, हाथ मिलाते निगुरों के साथ, खाते पीते हैं निगुरों के साथ, तो बुद्धि भी ऐसी हो जाती है व्यभिचारिणी। जो ईश्वर की छाती पर खेलने की शक्ति रखते, ईश्वर अपनी बात हटाकर उन ब्रह्म ज्ञानियों की रखते, ऐसा सदगुरु मिल जाए, लेकिन शिष्य में पहचानने की अथवा दृढ़ गुरु भक्ति नहीं, तो शिष्य ठन ठन पाल बन जाता है। इंद्र 33 करोड़ देवताओं का स्वामी इंद्र और बृहस्पति गुरु मिले हैं, और इंद्र ठन ठन पाल हो गया, गुरु की दी हुई माला का अपमान कर दिया, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, बुरी तरह इंद्र हारा, भटकते भटकते भगवान नारायण के पास गया इंद्र। नारायण ने कहा तो गुरु का ठुकराया हुआ, मैं इसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं, मैं राम अवतार लिया तो भी गुरु वशिष्ठ की शरण गया, और कृष्ण अवतार में भी मैं सांदीपनी की शरण गया, तो मैं गुरुओं की शरण जाता हूं, तो मैं गुरु का ठुकराए हुए को मैं कैसे शरण दूंगा। भगवान भगवान उपी भी न संभाले सकन, गुरु ठुकराए लगे। गुरु ऐसा वैसा गुरु नहीं, जो सदगुरु है उनकी बात कर रहा हूं। कुल गुरु होते हैं, पंचाक्षरी मंत्र देने वाले गुरु होते हैं, परंपरागत गुरु होते हैं, वो बात अलग है। जिनको सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मज्ञानी गुरु, उसका अगर कोई शिष्य बन गया है तो उसके लिए सब कुछ है। वो तो कबीर ने गुरुओं की व्याख्या की, एक गुरु प्रथम गुरु दाई जिसने नाड़ छुड़ाई, माँ और पुत्र का जो नाभि से कटिंग किया वो पहले गुरु, दूसरा गुरु जिन अक्षर ज्ञान दीना क ख ग स्कूल में पढ़ाया, तीसरा गुरु जिन कुल परंपरा का मंत्र दीना। ऐसे तो मेरे भी कुल परंपरा के मेरे बाप के गुरु थे, वही मेरे गुरु बने, लेकिन ये कुल गुरु है। चौथा गुरु जिन कंठी दीना, पंचम गुरु जिन शब्द सुनाया, षष्ठम गुरु जिन राज बताया, अब सतगुरु जहां से आया वहां पहुंचाया। तो पहला दूसरा तीसरा गुरु तक तो ठीक है, लेकिन चौथे पांचवें छठे और सातवें गुरु का काम एक ही सतगुरु करते हैं। शब्द भी सुना देते, नहीं तो शब्द सुनाने वाला है पंचाक्षरी मंत्र कुल परंपरा का शब्द सुनाते, वो बात अलग है। लेकिन सदगुरु जब शब्द सुनाता है तो शांभवी दीक्षा भी साथ में देता है, शब्द की जागृति की कृपा भी साथ में करता है, और जगत से वैराग्य और ईश्वर में प्रीति भी उसकी कृपा से होने लगती, और फिर सत्य की व्याख्या और सत्य में हमारी निष्ठा हो वो भी उनके सानिध्य से होता होने लगता है। जहां से आया वहां पहुंचाया, ये सदगुरु है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तो भगवान नारायण ने ना कह दी, भगवान ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक उपाय बताता हूं। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा वो ब्रह्मज्ञानी है, उनकी शरण जा, वो जो बताएं वो बिल्कुल सच्चे हृदय से करना। इंद्र गया, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र जो विश्वरूपा थे, उस विश्वात्मा ब्रह्म से उनकी एकता थी, इंद्र ने उनको अनुनय विनय करके सद्गुरु की जगह पर स्वीकार किया। त्वष्टा प्रजापति विश्वरूपा की खूब सेवा की, उनके हृदय को प्रसन्न किया। उन्होंने युक्ति बताई कि इंद्र तुझे फिर से राज्य चाहिए तो देख एक काम कर, दधीचि ऋषि के पास जा, और राजा होकर न जाना, दास होकर जाना, सेवक होकर जाना, और उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट कर। और वो दधीचि ऋषि पूछे क्या चाहिए, तो बोल देना कि मुझे राज्य चाहिए, और उस राज्य को पाने के लिए सामर्थ्य तो दधीचि ऋषि की हड्डियों में है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दधीचि ऋषि तो अब अपना सब काम कर चुके हैं और उनका समय भी पूरा हो गया, तो वे समाधि करके अपने आत्मा को परमात्मा में लगा देंगे और शरीर छोड़ देंगे, तो उनकी हड्डियां तो लेकर उसका वज्र बनाना। तो ऐसे तपस्वी की ही अस्थि सामने वाले को लगेगी तो देवताओं का पुण्य प्रभाव क्षीण हो जाएगा, अब तेरी विजय हो जाएगी। कैसी युक्ति लड़ाई, उसमें अपना संकल्प रख दिया त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा ने, और इंद्र ने ऐसा ही किया, और फिर हंसते हंसते उन बलवान दैत्यों को मार भगाया और इंद्र को फिर से राज वैभव सुख संपदा मिली। तो जो आदमी संसार में ऊंचा यशस्वी दिख रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ सत्कर्म या किसी न किसी सीधे या अनसीधे सत्पुरुषों की रहमत का हाथ होता है। अगर नहीं है तो घमंड से आके गिर जाएगा, अथवा उनकी रहमत को लापरवाही से ये कर दिया तो भी वो ज्यादा समय नहीं टिकेगा। फिर चाहे माता पिता ने सद्गुरु की सेवा किया हो, दादा दादी ने किया हो, और हमने माता पिता की किया हो, और थोड़ी बहुत संतों की किया हो, कुल मिलाकर जितना आदमी का पुण्य बलवान होता है उतना उसका इष्ट मजबूत रहता है। इष्ट मजबूत रहेगा तो अनिष्ट को वो दबाकर सुखी रहेगा, अगर इष्ट कमजोर हुआ तो उसका अनिष्ट बढ़ जाएगा, अनिष्ट उसके इष्ट को दबाकर उसको दुखी कर देगा। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु कहते हैं, ये राम जी जीव के दो जीव के दोनों पक्ष में दो मल हैं, एक इष्ट है दूसरा अनिष्ट है। अगर इष्ट मजबूत है तो अनिष्ट दबा रहता है, अगर अनिष्ट का इष्ट कमजोर हो जाता है, पुण्य कर्म सत्कर्म और संभालने वाला समर्थ का हाथ कम हो जाता है तो अनिष्ट जोर कर लेता है, अनिष्ट उससे दबा देता है। तो इंद्र का जब इष्ट मजबूत था तो यशस्वी हो रहा था, इष्ट उसका जरा रूठ गया, अनिष्ट जोर पकड़ लिया, इंद्र दब गया। फिर इंद्र ने भगवान नारायण की सलाह मानकर विश्वरूपास की शरण ली और इष्ट मजबूत किया, फिर इंद्र की विजय हुई। शिवाजी महाराज सो रहे थे, मुगलों ने ऐसा कुछ टूणा फूणा का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को तैयार किया और वो अपनी उस विद्या से, व्यक्ति तो हिंदू था लड़का तो, लेकिन तैयार किया था शत्रुओं ने उसको। शिवाजी सो रहे थे और वो शयनखंड तक पहुंच गया और उसने मयान में से तलवार निकाल के शिवाजी का गर्दन धड़ से अलग करने का, बस जो षड्यंत्र था उसके मन में करने को जा रहा था, एकाएक किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। वो बोलता है मैं यहां तक आया मैं अपनी उस विद्या से, सिपाहियों को भी नींद आ गई, ये हो गया, तुम कौन हो? बोले तुम्हारे इष्ट ने, तुम्हारे मंत्र जंतर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, तो शिवाजी का इष्ट गुरु कृपा भी उसकी रक्षा करने को यहां मौजूद है। तुलसीदास ने कहा रामायण में, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो गई। तो जो लोग बड़े व्यापारी हैं, राजनेताओं के साथ उठे बैठे हैं, ऐसे लोगों को सद्गुरु मिलता है तो वो सद्गुरु के साथ भी राजनेता जैसा व्यवहार करेंगे तो ठन ठन पाल हो जाएंगे, लेकिन सद्गुरु के आगे सत शिष्य होकर व्यवहार करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। अब मर्जी उनकी है, अच्छा डिसू टालम टोल नहीं, गुरु आज्ञा। तो उत्तम शिष्य होता है हनुमान जैसा, गुरु के संकेत को अथवा तो गुरु की सेवा को खोज लेता है। मध्यम शिष्य होता है कि संकेत अथवा आज्ञा पाकर सेवा में जुड़ जाता है, और अधम शिष्य होता है कि कहने पर सेवा करता है और टालता है, और अधमा अधम होता है उसके भाग्य में तो गुरु की सेवा कहाँ और मुक्ति कहाँ, वो तो संसार में जन्मता मरता रहता है। हरि ओ चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुत्रिया। जिस नैन पुत्रिया से जगत ये दिखता था और आकर्षित करता था, जन्म मरण के चक्कर में लाता था, गुरु की कृपा हुई, मेरी अंदर की जो आंख है वो खुल गई, अब तो मुझे ये जगत अपने विकारों में नहीं बांध सकता है। जगत को देखते देखते, खुली आंख जगत देखते देखते, जगत की गहराई में जो सत्चित आनंद स्वरूप चिदाकाश रूप ब्रह्म है वो मुझे दिख रहा है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नयन पुतरिया। गुरु की कृपा से वो दृष्टि मिल जाती है, सब दुख नाशिनी दृष्टि मिल जाती है। ये तो क्या मौत के समय भी आपका बाल बांका नहीं होता, ऐसे शहनशाह होकर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान नारायण को सुख शांति और ज्ञान होता है वही सद्गुरु की कृपा से इस साधक को सिद्ध अवस्था में हो जाता है। जो भगवान शिव जी की समझ है वही साधक की सिद्ध अवस्था में समझ आती है। जो भगवान ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार है वही मनुष्य शरीर में सद्गुरु की कृपा से हो सकता है। जो भगवान शिव को साक्षात्कार है, जो भगवान नारायण को आत्म साक्षात्कार है, जो ऊंचे ऊंचे महर्षि वशिष्ठ व आदि को है वो हो सकता है। वशिष्ठ के जमाने का शरीर अभी आपके पास नहीं है, राम के काल का शरीर और व्यवस्था और राज्य सुख नहीं है, लेकिन राम के समय जो परमात्मा था वही परमात्मा अभी है, और राम के हृदय में वशिष्ठ ने जैसे ब्रह्म ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा सुख प्रकट किया, वही परमात्मा सुख लीला सा बापू ने अपने प्यारे भक्त के ऊपर बरसा दिया। वस्तुओं पर युग का प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, लेकिन सत्य पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य अकाल पुरुष है और अकाल पुरुष का साक्षात्कार कराने वाले सद्गुरु की तो जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करो उतनी कम है। सद्गुरु की सेवा वास्तव में सद्गुरु की सेवा नहीं, शिष्य अपनी सेवा करता है अनंत गुनी। जैसे खेत में कोई दाना देता है तो क्या खेत को क्या देता है, अपने घर ही किसान लाने की व्यवस्था करता है। ऐसी सद्गुरु की जो भी सेवा है घूम फिर के हमारी, हमारे कुल की, हमारे खानदान की सेवा हो जाती। किसी ने कोई साधुओं की सेवा की, साधु थे सद्गुरु तो नहीं, साधु थे, सेवा करके वो सेठ पूछता है, वो सेठ इधर बैठा है, सेठ पूछता क्यों महाराज आनंद है ना, खुश हो ना? उन महाराजों ने कहा क्या आनंद क्या खुश, जो भाई करते हो तुम अपने लिए करते हो, हमको क्या, जयराम जी की पंजेला तो करी। रामतीर्थ बोलते थे ये शुक्र करके वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते हैं, कोई साधु संत तेरे दर पर खा लेता है तो तू शुक्र कर वो तेरे दर पे अपना भाग्य खा रहे हैं, तेरा यश और पुण्य बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सतगुरु की जो सेवा करते हैं वास्तव में अपनी ही सेवा करते हैं, सतगुरु का दैवी कार्य करते हैं वो वास्तव में अपना ही दैवी कार्य करते हैं। तो उत्तम शिष्य जब नाम दान लेता है तो उसकी श्रद्धा का सद्गुण ये पहली शर्त है। श्रद्धा जितनी पक्की होगी उतना ही गुरु के साधन में वो डटा रहेगा और उतना ही उसके जीवन में संयम बढ़ेगा, और जितना श्रद्धा होगी उतना तत्परता होगी, जितना तत्परता होगी उतना संयम होगा, जितना संयम होगा वो उतना ही महान बनता जाएगा। अश्रद्धा होगी ठन ठन पाल तो साधना करेगा ठन ठन पाल, संयम रहेगा ठन ठन पाल, हो जाएंगे बुरे हाल। हमने गुरु तो किया है लेकिन यार अभी दुखी रहता हूं, तो तुमने गुरु सदगुरु नहीं किया है, तुमने केवल सिंबल लगा लिया, लर्निंग लाइसेंस लिया, अभी पक्का लाइसेंस नहीं मिला है बेटा। सद्गुरु शिष्य का पहला लक्षण है कि सद्गुरु में अटूट श्रद्धा हो। अरे जैसे सप्तऋषियों ने आकर पार्वती की श्रद्धा हिलाने की कोशिश की, पार्वती नहीं हिली, ऐसे ब्रह्मा आकर भी श्रद्धा हिलाए, विष्णु आकर भी श्रद्धा हिलाए फिर भी श्रद्धा नहीं हिली, शिवजी आकर श्रद्धा हिलाए फिर भी श्रद्धा नहीं हिली, ऐसा सांदीपक हो गया। वेद धर्म गुरु के एक शिष्य थे सांदीपक, गुरु की उस पर कृपा देकर दूसरे शिष्यों को जरा खटकता था। गुरु ने लीला किया, गुरु ने कहा मेरा प्रारब्ध यश में से अपयश का होगा, इसीलिए तुम लोग खिसक जाओ, नाहक तुम्हारा भी फिर अपयश हो। तो जो ऐसे ही थे दिखावटी भगत, उन्होंने कहा गुरु ठीक कहते हैं, खिसक गए। दूसरे जो मध्यम भक्त थे उन्होंने कहा अपयश होगा तो क्या है, अपयश करने वालों को पाप लगेगा, हम अपने गुरु को क्यों छोड़ें, दुनिया चाहे कुछ भी बके लेकिन हमको तो आपसे ज्ञान मिला है, आपसे शांति मिली है, हम तो आपके ऋणी रहेंगे गुरुजी, प्राण चले जाए लेकिन हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे। गुरु ने कहा तुम नहीं शरण छोड़ते तो मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अपयश भी होगी और बीमारी भी आएगी, और मेरे को कोढ़ की बीमारी होगी और आंखें भी चली जाएगी, अंधा हो जाऊंगा, और फिर मैं अंधा रहूं और आपको दिखूं ऐसा अंधा अंधा आपको दुख होगा, मैं आश्रम छोड़ के गंगा किनारे जाऊंगा, वहीं रहूंगा, भजन करूंगा। तो इतने में तो गुरु ने अपना जो कुछ योग शक्ति से करना है, कोढ़ की बीमारी निकली, पीप बहने लगा, आंखें भी खराब होने लगी, दिखना भी कम हो गया। शिष्यों ने देखा अच्छा तो गुरु जी अब गंगा किनारे जाएंगे तो ठीक रहेगा। सांदीपन ने कहा गुरु जी कुछ भी हो मेरे को तो साथ ले चलो। अरे बेटा कोढ़ होगा, बदबू निकलेगी शरीर से, मेरा प्रारब्ध है भोगने दे, तू क्यों बीच में अपने सिर पर कचरा लेता है। बोले गुरुजी का ब्रह्म ज्ञान का सुख हम भोग सकते तो गुरुजी के दुख में हम थोड़ा दुख भोग लें तो गुरुजी हमारा सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य में हमको आप मदद कीजिए। ऐसा डट के उसने प्रार्थना की कि गुरु जो बात करे वो विनंती करके उस बात से अपने अपनी सेवा वो पक्की करा ले। गुरु ने कहा अच्छा तू नहीं मानता है तो चल, लेकिन वहां भागेगा। गुरु जी बस सेवा दीजिए। झोपड़ी बनाकर रह रहे, गुरु को कोढ़ हो गया, आंखें चली गई, दिखता नहीं, पीप साफ करता है, भिक्षा करके ले आता है, गुरु जी को खिलाता है, और गुरु जी गालियां दे रहे हैं बदले में, नालायक क्या है, मैं ना बोला था फिर भी चिपक गया, जोक जैसा चला जा, ये क्या सेवा है, ऐसा है वैसा है। भाई केजी वालों की कड़क परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा तो कॉलेज में होती है। जितना जितना साधक ऊंचा होता है, जितना जितना विद्यार्थी ऊंचा होता है, उतना उतना पेपर ऊंचा आता है। तो गुरु को सब कुछ देना था जिस शिष्य को, तो सब सब तरफ से उसको कसना था, लेकिन वो हटा नहीं, वो हटा नहीं। लेकिन भगवान को हुआ कि अरे ऐसा शिष्य मेरे नगरी में रहता है, मैं उससे जा मिलूं। भगवान शंभ सदाशिवाय सांदीपक को मिलते हैं। तू मेरी काशी नगरी शिव की नगरी है, ऐसा तू सदगुरु का सतशिष्य है। लोग तो काशी विश्वनाथ की पूजा करते, उपवास करते, उनके पास अभी नहीं गया और तेरे बिना बुलाए तेरे पास आया हूं। मैं तेरे पर खुश हूं, तेरी गुरु भक्ति पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तूने गुरु परंपरा का शान बुलंद कर दिया। वत्सल तेरे को जो मांगना है मांग ले। बिना मांगे दर्शन दे रहे और बिना मांगे वरदान का ऑफर कर रहे। सांदीपक कहता है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो हे शंभ सदाशिव, मेरे गुरुदेव की पीड़ा हर लीजिए, बस उनको आंखें दे दीजिए। शिव जी ने कहा मैं तो दे दूं, लेकिन तेरे गुरु से पूछ और भी कुछ चाहिए। वो गया, गुरुजी भगवान शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और आपके लिए मैंने मांगा कि रोग मुक्त हो जाए और आंखें मिल जाए। गुरु ने कहा नालायक, अरे दुष्ट, जा जा जा, वरदान वापस कर दे, मेरा प्रारब्ध मैं भोगूंगा। तू सेवा करने से कतराता है, इसलिए मेरे लिए भीख मांगता है। भीख मांगे हम शिवजी से भीख मांगकर स्वस्थ रहेंगे? नहीं नहीं, हम तो अपना प्रारब्ध भोगेंगे, शरीर भोग रहा है, मैं तो स्वयं शिव स्वरूप हूं, मैं उनकी कृपा लेकर स्वस्थ हो जाऊं। ऐसा तू मेरे को मंगता बनाने को आया है? शहनशाह सदगुरु को तू भिखारी बनाने आया? जा भिखारी कहेंगे, भाग यहां से। वो गया शिवजी के चरणों में, गुरु जी महाराज प्रभु आप अपना वरदान कैंसिल करिए। शिवजी मुस्कुराए, अंतर्धान हो गए कि धन्य है गुरु भक्ति इसकी और धन्य है गुरुदेव की अपनी निष्ठा। शिवजी से रहा नहीं गया, भगवान नारायण के पास गए कि मेरी नगर में कैसे दोनों आए। शिष्य शिष्य की जगह नहीं छोड़ता और गुरु अपने गुरु तत्व को नहीं छोड़ता। कितना बेपरवाह गुरु है, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, परवाह नहीं। ऐसा गुरु, गुरु को परवाह नहीं, शिष्य को भी परवाह नहीं। शिष्य भी पक्का है तो गुरु भी पक्का है। अब ये दो ऐसे मिले हैं कि नारायण तुम जाओ उनके दीदार करो। दीदार के लिए लोग छटपटाते हैं, लेकिन सत शिष्य और सतगुरु की ऐसी जोड़ी मिली है कि भगवान नारायण दीदार करने को आए। वेद धर्म गुरु का ये कथा नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ ने अपने प्यारे शिष्यों को वेद धर्म की कथा सुनाई थी, सांदीपक की सुनाई थी। गुरु गीता में भी ये कथा थोड़ी सी है। भगवान नारायण आए कि सांदीपक तेरी गुरु भक्ति देखकर मैं बिन बुलाए आया हूं, क्योंकि गुरु का दर्जा संसार में ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। हर इज्जत वाले से सतगुरु की ऊंची इज्जत है। परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मवेता जीव ब्रह्म की एकता, ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है ऐसी, और सारा ब्रह्मांड एक चिदाकाश स्वरूप है ऐसी समझ वाला, ऐसे सत्य का साक्षात्कार किया हुआ सतगुरु में तेरी ऐसी निष्ठा, मैं बड़ा प्रसन्न। तेरे सतगुरु भी अच्छे हैं, लेकिन एक बात तेरे सतगुरु की हमको अच्छी नहीं लगी। मेरे सतगुरु की बात पूछ? नहीं नहीं, देखो देखो सुनो, नारायण समझते हैं कि ये सद्गुरु के विरुद्ध का एक शब्द नहीं झेल सकता। देखो भाई, सद्गुरु अच्छे हैं, उनमें सहन शक्ति है, उन्होंने वरदान तुम अपने हित के वरदान को ठुकरा दिया, चलो वो तो सद्गुरु है, लेकिन तू अपने हित का तो मान ले, तू अपने लिए कुछ ले ले। बोले मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो सद्गुरु के लिए ले। नहीं, सद्गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए, तो तू अपने लिए ले ले पागल, तूने इतनी सेवा किया वो क्या देंगे। बोले देखो, आप मेरी श्रद्धा तोड़ने का एक शब्द भी कहते तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मैं आपका अनादर तो नहीं करता हूं, लेकिन आप नारायण के। अच्छा देखो सुनो, तुम अपने लिए कुछ मांग लो। मैंने मेरा दाता कर रखा है, मांगूंगा तो वहीं से मांगूंगा, जिनकी सेवा से आप बिन बुलाए आ गए उनको छोड़कर मैं आपसे कैसे मांग सकता हूं। मांगे देते रहते हैं दिन रात, मेरे पाप ताप कर मुझ में मजबूती भरते रहते हैं, वो तो बिना मांगे देने वाले दाता है। तो मैं आया हूं, देव आया है, और अगर वरदान नहीं लेता तो ये देव का अपमान है, कुछ वरदान मांग ले।